आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अन्विता कुमारी और आज हम पढ़ेंगे आपकी पुस्तक क्षितिज का पाठ 5। ये दो छोटी छोटी कविताएं हैं, एक का नाम है उत्साह और दूसरे का अट नहीं रही है। इसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में जान लेंगे, आइए निराला जी का जीवन परिचय पहले पढ़ते हैं। आप लोग पेज नंबर 31 पर आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पेज नंबर 31 पर हम स्टार्ट करते हैं लेखक का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। तो ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं, निराला इनका उपनाम है। इनका जन्म कहाँ हुआ था स्टूडेंट्स? बंगाल के महिषादल में 1899 यानी 1899 में। लेकिन ये मूलतः कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक जगह है गढ़ाकोला, वहां के। इनकी जो औपचारिक शिक्षा है वो 9वीं कक्षा तक महिषादल में ही हुई। उसके बाद इन्होंने स्वाध्याय यानी खुद से अध्ययन करके, खुद से पढ़कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी जैसी भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। इन्हें लिखने के अलावा और किस किस चीज का शौक था? ये संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, यानी म्यूजिक और फिलॉसफी भी ये पढ़ते थे। और किसकी विचारधारा ने इन पे प्रभाव डाला, यानी किसको ये मानते थे, किसके विचारों का समर्थन करते थे? रामकृष्ण परमहंस जी और विवेकानंद जी की, ठीक है। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और सन 1961 में उनका देहांत हो गया। इनका जो जीवन है बच्चों, पारिवारिक जीवन यानी जो इनके परिवार का, परिवार के लोग थे, वो इनसे बिछड़ते चले गए, उनका निधन होता चला गया, जिससे इनके जीवन में बहुत दुख और संघर्ष भर गए थे। उसके साथ ही साहित्यिक मोर्चे पर भी इन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत मेहनत की। इन्हें प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। शुरुआत में इनकी कविताएं नहीं छप रही थी। तो ये जो इनका जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ रहा, उसने इन्हें व्यक्ति के तौर पर और उभारा और फिर 1961 यानी 1961 में इनका निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। तो इनकी काव्य रचनाएं मुख्य कौन कौन सी हैं? अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। और कविताओं के अलावा इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध भी लिखे हैं, जिनमें इन्हें प्रसिद्धि मिली। इनका जो पूरा साहित्य है, जो भी रचनाएं हैं, वो निराला रचनावली नाम के एक ग्रंथ में 8 खंडों में प्रकाशित हैं। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है, ठीक है। अब निराला विस्तृत सरोकार के कवि हैं, यानी उनका जो लेखन विषय है वो बहुत ही विस्तृत है। वो कई तरह के विषयों को चुनते हैं अपने लेखन के लिए। दार्शनिकता यानी फिलॉसफी, विद्रोह, क्रांति, प्रेम को, प्रकृति को, हर चीज को उन्होंने अपनी रचनाओं में शामिल किया है। और उनका जो विद्रोही स्वभाव था, कुछ नया करने का स्वभाव था, उसी के कारण उन्होंने छायावादी कवि जो हुए हैं, छायावाद के जितने भी कवि हुए हैं, उनमें सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था निराला जी ने। वहीं जो हमारे समाज का शोषित वर्ग है, उपेक्षित वर्ग है, पीड़ित वर्ग है, जिसे हम पिछड़ा हुआ मानने लगे हैं, उनके प्रति भी सहानुभूति निराला जी ने अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में दिखाई। ठीक है, जहां ये जो शोषक वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, इसके प्रति सहानुभूति है, वहीं दूसरी ओर जो शोषक वर्ग है ना, जिसके पास सत्ता है, जो अपने आप को मजबूत समझता है, उसके लिए विरोध और क्रांति का भाव भी निराला की कविता में दिखता है। अब आप लोग पेज नंबर 32 पर आ जाइए, यहाँ पर हम थोड़ा सा कविता का परिचय पढ़ेंगे। उत्साह एक आहान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरे करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नव जीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। ठीक है, तो उत्साह क्या है? एक आह्वान गीत, यानी कि बादलों को वो संबोधित करते हुए उन्हें बुला रहे हैं। बादल निराला का प्रिय विषय रहा है, यानी बादल से संबंधित निराला जी ने कई कविताएं लिखी हैं। इस कविता में बादल जो है वो क्या कर रहे हैं, एक तो जो पीड़ित लोग हैं, प्यासे लोग हैं, यानी जो शोषित वर्ग हैं, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, तो दूसरी तरफ वही बादल नए अंकुर लेकर आया है, विध्वंस और क्रांति के लिए लोगों को जागृत भी कर रहा है ना। तो इसमें कवि की कल्पना भी है, साथ ही जीवन के लिए एक बड़ी दृष्टि, क्रांति, विद्रोह के भाव भी इसमें समाहित हैं। और निराला जी हमेशा ही ये सोचते हैं, सामाजिक क्रांति यानी समाज में जहां परिवर्तन की आवश्यकता हो, वहां आपको विद्रोह करना चाहिए, वहां आपको क्रांति करनी चाहिए, और इसके लिए साहित्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी साहित्य के द्वारा ही आप अच्छे से ये विद्रोह या क्रांति के भाव दर्शा सकते हैं। ठीक है, और इसे निराला जी इसे क्या नाम देते हैं, नवजीवन या नूतन कविता। तो ये तो हो गई उत्साह कविता के बारे में। एक और कविता निराला जी की यहाँ दी गई है, अट नहीं रही है। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। तो ये जो कविता है अट नहीं रही है, ये किसके ऊपर है, फागुन की सुंदरता, है ना। जो वसंत का मौसम होता है, फागुन के महीने में होली के आसपास का जो मौसम होता है, उसमें जो सुंदरता होती है, मादकता होती है ना, एक नशा सा होता है, और हर तरफ एक सुंदरता जो हमें देखने को मिलती है, उसी का वर्णन कवि ने किया है। और वो ये भी कहते हैं कि जब आप प्रसन्न होते हैं तो आपको हर तरफ वैसा ही सौंदर्य उल्लास दिखाई देता है जैसा आप फागुन में महसूस करते हैं। इस कविता के लिए उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्द चुने हैं, लय भी दी है कविता को, और जितना सुंदर फागुन होता है उतनी ही सुंदर कविता निराला जी ने लिखी है। ठीक है, तो अब आइए कविता पढ़ते हैं, पेज नंबर 33 पर आ जाइए। देखिए पहली कविता है उत्साह, क्योंकि ये बादलों के लिए लिखी गई है, तो यहाँ पे आपको बादलों का चित्र भी देखने को मिल जाएगा। तो मैं पढ़ती हूँ। बादल गर्जो घेर घेर गर गोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गर्जो। इसमें सबसे पहले आप अर्थ समझने से पहले ये देख लीजिए कि यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है है ना, घेर घेर घोर गगन, घ क घ और घ का रिपीटेशन हो रहा है, घ की आवृत्ति हो रही है, यानी घ का जो शब्द है वो बार बार आ रहा है ना, ललित ललित में ल बार बार आ रहा है, तो ये अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। अब देखिए इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं, बादलों को गरजने के लिए आह्वान कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि आप बरसिए, गरजिए, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, है ना, यानी ये जो पूरा गगन है, पूरा आकाश है, इसे घेर लो, और धराधर यानी कि लगातार बारिश बरसाओ, गरजो, खूब तेज तेज बरसो। बाल कल्पना ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। अब वो क्या है, कवि बादलों को एक बालक की तरह देखता है, जैसे काले काले घुंघराले बादलों का जो रूप है वो ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे के बाल होते हैं ना, काले काले घुंघराले बाल, वैसे ही कवि को बादल लग रहे हैं। और इन्हीं बादलों से फिर कवि क्या कहते हैं कि तुम पूरे आसमान को घेर लो और घनघोर ढंग से गर्जना करो। बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले, यानी जो नवजीवन वाले कवि हैं, यानी जो क्रांतिकारी कवि हैं, उन्हीं की तरह बादलों के भी उर्मे यानी हृदय में एक असीम ऊर्जा भरी हुई है। इसीलिए कवि उनसे कहते हैं कि तुम किसी नई कविता को लिख दो, एक नई कविता की रचना कर दो और उस रचना से सबको भर दो, बादल गरजो। ठीक है, आगे देखिए, विकल विकल उन्मंत है उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब इनमें कवि क्या कह रहे हैं, जो तपती हुई गर्मी से लोग बेहाल हो चुके हैं, है ना, उनका मन कहीं पे भी नहीं लग रहा है, तो जो हर दिशाओं से बादल घिर आए हैं, तुम जल्दी से बरस जाओ और ये जो तपती हुई धरती है इसको शीतल कर दो यानी ठंडा कर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन यानी लोग व्याकुल हो चुके हैं, अनमने हो चुके हैं, अब जो तुम हर दिशाओं से, अज्ञात दिशाओं से यानी अनजान दिशाओं से आए हो, तो बरसो और गरजो और ये जो तपती हुई धरती है इसे अपने पानी से ठंडा कर दो, बादल गरजो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझ में आया आपको, पहली चीज कवि जो है लोगों की व्याकुलता शांत करने के लिए चाहते हैं कि बादल जो है वो बरस जाए और ये जो गर्मी हो रही है, जो तप रही है धरती, वो ठंडी हो जाए, साथ ही वो कहीं बादल को एक बच्चे के रूप में देखते हैं तो कहीं पे ऐसे भी देखते हैं कि जैसे वो कोई क्रांतिकारी कवि हो, है ना, नया जीवन लिख रहा हो, तो ऐसे में उन्हें नई रचना करनी होगी यानी लोगों के मन में नई सुंदरता का भाव भरना होगा। चलिए आगे देखिए, अब ये आपकी एक कविता उत्साह पूरी हो गई, अब पेज नंबर 34 पर देखिए, अट नहीं रही है ना, दूसरी कविता है अट नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। तो इसमें कवि जो है वो फागुन के महीने यानी वसंत ऋतु का वर्णन कर रहा है कि जो वसंत ऋतु का आगमन होता है वो कब होता है, फागुन के महीने में, तो वही उसकी सुंदरता को बताते हुए कवि कह रहे हैं कि इसकी आभा, इसकी सुंदरता इतनी अधिक है कि वो कहीं समा ही नहीं पा रही है ना, यानी इस पूरे संसार से अनंत है उसकी सुंदरता, कहीं समा ही नहीं पा रही। जैसे अगर आपके पास एक डिब्बा है और आप उससे ज्यादा पानी डालें तो पानी बाहर बहने लगेगा ना, उसमें सारा पानी नहीं आ पाएगा, वैसे ही फागुन की या वसंत ऋतु की सुंदरता इतनी अधिक है कि यहाँ कहीं पे भी वो समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नब में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। अब वो क्या कह रहे हैं, वसंत ऋतु को कह रहे हैं कि तुम में ऐसा नशा है कि तुम जब भी सांस लेते हो ना तो हर घर में खुशबू आ जाती है ना, और ऐसा लगता है वसंत ऋतु जो है अब वो आसमान में उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ा रही है। कवि कहते हैं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन इस अनंत सौंदर्य से मेरी आंखें हट ही नहीं रही हैं, है ना। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, यानी अगर मैं आंख हटाना भी चाहूँ तो मेरी नजरें इस सुंदरता से कहीं हट ही नहीं रही है। चारों ओर इतना सुंदर वातावरण हो गया है कि नजरें वही टिकी हुई हैं। आगे देखिए, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंद पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यानी पत्तों से लदी डाल, यानी पेड़ों की डालियों पर नए नए पत्ते निकल आए हैं, कहीं हरी कहीं लाल, यानी कुछ में लाल पत्ते कुछ में हरे पत्ते, रंग बिरंगे पत्ते हर पेड़ पौधों पे निकल रहे हैं। कहीं पर कैसा लगता है, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, ऐसा लगता है जैसे पेड़ों के उर्मे यानी पेड़ों के गले में बहुत ही हल्की हल्की खुशबू देने वाले फूलों की माला लटक रही है, यानी पेड़ ने माला पहन रखी है। हर तरफ शोभा और सुंदरता बिखरी पड़ी है, पाट पाट शोभा श्री, यानी हर तरफ शोभा और सुंदरता बिखरी पड़ी है और इतनी अधिक है कि वो कहीं पट नहीं रही, यानी पूरी धरती पे कहीं पे भी ये सुंदरता समा नहीं पा रही है। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये दो कविताएं हैं और आप अगर ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि दोनों ही कविताओं में कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है ना। एक में बादलों का और एक में वसंत ऋतु के समय कैसा मौसम हो जाता है, आसपास का वातावरण कितना सुंदर हो जाता है, यही कवि ने यहाँ पे वर्णित किया है। ठीक है, अब देखिए आगे आइए पेज नंबर 35 पर, यहाँ पे दिए हैं इसके प्रश्नोत्तर। तो अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। ठीक है, पहले दिया है उत्साह का और फिर दिया है अट नहीं रही है। दोनों कविताओं के अलग अलग प्रश्नोत्तर हैं, तो पहले हम उत्साह की कविता के प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? कवि जो है वो कह रहा है, जैसे होता ना हल्की हल्की बारिश करें या रिमझिम बारिश हो या हल्की फुहार हो या अच्छे से बरसे, बारिश की जगह वो गरजने के लिए कह रहे हैं ना, तो ऐसा क्यों है? तो आप बताएंगे कि कवि जो है वो बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के बजाय गरजने के लिए कह रहा है, क्योंकि गरजना विद्रोह का क्रांति का प्रतीक है और कवि बादल के गरजने के माध्यम से ही कविता में नूतन विद्रोह करना चाहता है, समाज में एक क्रांति की भावना लाना चाहते हैं। ठीक है, तो कवि ने क्रांति और विद्रोह की भावना दिखाने के लिए गरजना शब्द का प्रयोग किया है। प्रश्न दो देखिए, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो देखिए, जैसे कि हमने पढ़ा ये एक आह्वान गीत है ना, कवि जो है वो समाज में क्रांति लाने के लिए विद्रोह करने के लिए लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं। और बादल जब गरजते हैं ना, बादलों की जो आवाज आती है, जो मौसम बन जाता है, तो लोगों के मन में वो सब देखकर अपने आप ही एक उत्साह भरने लगता है और इसी को ध्यान में रखकर कवि ने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा है, ताकि लोगों के मन में एक उत्साह का भाव जगे और वो क्रांति करने के लिए जागरूक हो सके, आगे बढ़ सके, समाज के लिए भी और कवियों को साहित्य में भी कुछ नई रचना करने के लिए, नई कविता करने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। वही लोगों को समाज में भी कुछ नया परिवर्तन करने के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है, जो कवि अपने इस गीत के माध्यम से लोगों में भर देना चाहता है। इसलिए कविता का शीर्षक उत्साह है, जो कि पूरी तरह उपयुक्त है। प्रश्न तीन देखिए, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? वैसे ये प्रकृति का चित्रण है, लेकिन बादल के माध्यम से कवि ने किस किस ओर संकेत करना चाहा है, हमें यह बताना है। तो एक तो बादल वो शक्ति है जो जल बरसा सकती है ना, यानी जो प्यासे लोग हैं, पीड़ित हैं, तड़पे हुए लोग हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, उनकी व्याकुलता को नियंत्रण में कर सकते हैं। दूसरा, बादल जो है वो कवि में उत्साह और संघर्ष भर सकते हैं। ठीक है, एक तो बादल जल बरसा सकते हैं, यानी जो प्यासे और तड़पे हुए लोग हैं उन्हें उनकी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। दूसरे, जो कवि होते हैं उनमें भी उत्साह और संघर्ष बादल भर सकते हैं। तीसरा, समाज को भी क्रांति के लिए प्रोत्साहित करने में बादलों का योगदान हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे कई तरीके से कवि ने बादल की शक्ति की ओर संकेत किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 4। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है, छांट कर लिखिए। तो कौन से शब्दों में नाद सौंदर्य पता चलता है, जहां ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा, यानी एक ध्वनि हमें महसूस हो, एक आवाज का आभास हो। जैसे अगर हम कहें कि हवा सन सन चल रही है, तो ये जो सन सन है इससे हमें आभास हो कि हवा कैसे चल रही है ना, उसकी एक हम ध्वनि महसूस करेंगे, सुन पाएंगे, वही होता है नाद सौंदर्य। तो आपको कविता में ढूंढना है कि ऐसी कौन सी पंक्तियां हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है। तो पहले देखिए दूसरी ही पंक्ति, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ठीक है, इसमें है। दूसरा, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, ठीक है। तीसरा, विद्युत छवि उर्मे, ठीक है, ऐसी कुछ पंक्तियां हैं जिनमें आपको महसूस होगा ध्वनि का सौंदर्य, है ना। घेर घेर घोर गगन, है ना, ललित ललित, विद्युत छवि, इनको जब आप पढ़ेंगे तो आपके आंखों के सामने जहां चित्र बनेंगे वहीं कानों में एक ध्वनि का भी आवाज होगा। तो ये पंक्तियां आप कविता की पहले पैराग्राफ में से छाट कर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न 5, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये जो प्रश्न है वो आपकी रचना शक्ति, आपकी सृजनात्मक शक्ति, आपकी कल्पना शक्ति, तीनों को बढ़ाने के लिए दिया गया है। आप कुछ नया सोच सकें, कुछ नया लिख सकें, है ना। तो आपको अपने भावों को व्यक्त करना है। वो क्या कह रहे हैं, जैसे बादल उमड़ते घुमड़ते हैं और फिर बारिश होती है, वैसे ही कवि के मन में भी जो भाव है वो उमड़ते घुमड़ते हैं और फिर कविता की बारिश होती है। आपको भी अपने आसपास कुछ ऐसा सौंदर्य देखना है कि या तो पेड़ पौधे देखकर, या नदियां देखकर, झरने देखकर, पहाड़ देखकर, कोई पशु पक्षी देख के, चिड़िया उड़ती हुई देख के, है ना, चिड़ियों की आवाज सुन के, मतलब प्रकृति का कोई भी दृश्य या प्रकृति का कोई भी हिस्सा ऐसा हो सकता है जिसे देखकर या जिसे सुनकर आपके मन में कोई भाव आने लगे, है ना, कुछ विचार आने लगे। तो अपनी उन्हीं भावनाओं को, अपने उन विचारों को आपको एक कविता के रूप में लिखना है। ठीक है, इससे आपकी लेखन शक्ति में भी काफी सुधार आएगा, कल्पना शक्ति बढ़ेगी, आप कितनी दूर तक और कितनी अच्छी कल्पना कर सकते हैं, रचना शक्ति बढ़ेगी, सृजनात्मक क्षमता की आप क्रिएटिव हो जाएंगे, कैसे कुछ नया लिख रहे हैं, है ना। तो आप एक कॉपी पेन लेंगे, जरूरी नहीं है पहली बार में ही कविता अच्छी हो जाए, लेकिन आपके लिए वो पहला अनुभव होगा तो वो आपके लिए अच्छा ही होगा, है ना। आप अच्छी लिख रहे हैं या बुरी लिख रहे हैं इस बात की फिक्र को छोड़ दीजिए, बस एक कविता आपको लिखनी है, ये ध्यान रखिए। तो अब आप अपने आसपास कोई भी प्रकृति का दृश्य देखिए, महसूस कीजिए आपको कैसा लग रहा है, और उसे शब्दों में बांधने का प्रयास कीजिए। जैसे अगर आप घर के बाहर निकलते हैं और पेड़ पर बैठी हुई कोयल दिखती है, तो आप कुछ भी दो चार पंक्तियां बना सकते हैं कि लगा कि पेड़ की गोद में झूला झूल रही है कोयल, कुहू कुहू करके बोल रही है कोयल, है ना। ऐसे करके मतलब ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ दो पंक्तियों का, आप ऐसे कम से कम 5-6 पंक्तियां लिखेंगे, चाहे वो झरने को देख के, नदी, कोई भी चीज हो सकती है। मैंने आपको पेड़ और कोयल का उदाहरण दिया है ना, कि ऐसा लग रहा है पेड़ की गोद में झूला झूल रही है कोयल, कुहू कुहू करके मीठा बोल रही है कोयल। ठीक है, तो ये आपका रचना और अभिव्यक्ति का प्रश्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पाठेतर सक्रियता। बादलों पर अनेक कविताएं हैं, कुछ कविताओं का संकलन करें और उनका चित्रांकन भी कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट वर्क, है ना। आप चाहें तो किसी चार्ट पेपर पे या चाहें तो एक फाइल बना लीजिए और उसमें आपको क्या करना है, एक मतलब जिन भी लेखकों ने बादल पर कविता लिखी है, जिन भी लेखकों ने बादल विषय पर कविता लिखी है, वो आपको इकट्ठी करनी है और उसका अगर चित्र लगा सकते हैं या तो लेखक का या कविता का, तो भी आप वो लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, सुमित्रा नंदन पंत जी, है ना, वो भी छायावाद के ही कवि रहे हैं, उनकी एक कविता है बादलों के ऊपर ही, धूम द्वारे काजल कारे हम ही बिकरारे बादल, मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ते फड़ीधर, चमक झमक में मंत्र वशी कर, जहर रहस्य में विष पी कर, स्वर्ग सेतु से इंद्र धनुर्धर, काम रूप घन श्याम अमर। ठीक है, ये एक कविता है बादलों पर सुमित्रा नंदन पंत जी की। ऐसे ही एक और कविता है, कितना ही अच्छा हो यदि मैं बादल बन जाऊं, नीले नीले आसमान में इधर उधर मंडराऊं, जब भी देखूं सूखी धरती झट पिघल में जाऊं, गर्मी से तंग लोगों को आराम में दिलवाऊं। ठीक है, ऐसे ही करके आपको जो भी कविताएं जिस भी लेखक की बादल पर या इस विषय से संबंधित मिलती हैं, तो आप उसे अपनी उस फाइल में लिखेंगे और चित्रांकन भी करिए, यानी आप चाहे तो हाथ से कोई चित्र बना सकते हैं, चाहे कहीं से बादलों का या प्रकृति का चित्र उस पर चिपका सकते हैं, या आप लेखक का चित्र सब चिपका सकते हैं। ऐसे एक फाइल आपको, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना है। ठीक है, तो ये आपके प्रोजेक्ट वर्क का, आपका होमवर्क का काम हो गया। आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा जिसमें आपको कम से कम 4-5 कविताएं इकट्ठी करनी है और उसका चित्रांकन भी करना है। ठीक है, तो ये हमने उत्साह के प्रश्न उत्तर कर लिए। अब जो अगली कविता थी, अट नहीं रही है, उसके प्रश्न उत्तर हम अगले ऑडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।